جزاكم الله خير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में इरादा किया, अल्लाह ताला ने दिल में डाला कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले हमारी दो क्लासें शाम वाली रह गई हैं, एक आज पीर की क्लास और एक बुध की क्लास इंशाल्लाह। तो आज जो है वो रमज़ान मुबारक के बारे में कुछ बात कर ली जाए, और बुध की क्लास में या तो अगर कुछ बाकी बच गया होगा इसमें से तो फिर वो कवर कर लिया जाए, और कुछ जो है वो ज़कात के बारे में बुध की क्लास में बात कर ली जाए। तो
ओके
रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल का, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से भी साबित है कि रमज़ान मुबारक के शुरू होने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया, सहाबा कराम को, और रमज़ान मुबारक के बारे में बताया, तो इस वजह से ये हमारे ऊपर भी ये यानी तकाजा है कि हम भी जो है वो ऐसा किया करें रमज़ान मुबारक से पहले, गो के हर साल भी करते रहे हों, कई दफ़ा पहले भी कर चुके हों, लेकिन हर मर्तबा जो है वो सुन्नत की इतबा की नीयत से जो है वो करना चाहिए। तो आपके सामने अभी आयात हमने तिलावत करी, सूरह बकरा की आयात नंबर 183 से लेकर के आगे 185 तक, यानी सिर्फ जो है ना वो ये तीन ही आयात हैं, और इन तीन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ फरमा दिए। ठीक है, तो ये कुतिबा अलैकुम सिर्फ ये दो अल्फाज हैं कि लिख दिए गए तुम्हारे ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या शान है, क्या अजमत है कि उसके दो अल्फाज से जो है वो उसके बंदों के ऊपर और उसकी बंदियों के ऊपर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। फ़र्ज़, जैसा कि आप जानते हैं, ये शरीयत के उन हुक्मों को कहा जाता है कि जिन पर अगर अमल ना किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाराज़गी मिलती है, सज़ा मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नापसंदीदगी का ये मूजब बनते हैं। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे परवरदिगार का दिया हुआ है, और जो कुछ होगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जो कुछ भी हमारे पास होगा वो सब कुछ भी हमारे परवरदिगार ही की तरफ से मिला हुआ ही होगा। तो हम माजी में भी और हाल में भी और मुस्तकबिल में भी हम कंप्लीटली 100% अपने परवरदिगार के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे परवरदिगार की नेमतों का और ऐसे परवरदिगार की तरफ जो हमारी हाजत बनती है, तो इसका भी ये इनफ तकाजा है, यानी ये भी इनफ रीजन है कि हम अपने परवरदिगार के मर्जी के खिलाफ ना करें, उसके हुक्मों के खिलाफ ना करें, या उसने हमारे लिए जो रास्ता पसंद किया है उस रास्ते को छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार ना करें। इतना ही काफी है कि जो कुछ हमारे पास है और था और होगा, ये सब उसी का दिया हुआ है, हमारा अपना किया कराया तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा दर्जा ये कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें जो है ना वो ऐसे ही बस कुछ भी नहीं होगा और ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और जो है वो कोई मामला नहीं होगा हमारे साथ सजा का या नाराजगी का, बल्कि ये भी हमारे परवरदिगार का बनाया हुआ निज़ाम है कि अपने के अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ वर्जी करने के ऊपर फिर सजा भी मिलती है। ठीक है, तो अगर शुक्राने की नीयत से, शुक्र अदा करने की नीयत से नहीं भी कोई कर रहा, जो कि एक ज्यादा आला दर्जा है, ये बीइंग थैंकफुल, आप जो है वो अपने मुनइम, अपने ऊपर नेमतें और अपने ऊपर एहसानात करने वाले के साथ अच्छा बर्ताव करें, उसकी बात माने, अगर कोई ये इन अच्छे अखलाक का मालिक नहीं भी है तो भी कम अज कम सजा के खौफ से तो उसको ये करना ही है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी अकल के ऊपर मामला नहीं छोड़ा कि हम अपनी अकल से सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इतना हसीन है और इतना रहीम है और इतना करीम है, राइट, और अल्लाह ताला के इतनी मखलूकात हैं तो अल्लाह को क्या क्या पड़ी है, अल्लाह को क्या पड़ी है कि किसी बिल्कुल ही यानी इनसिग्निफिकेंट जो मखलूक है जैसे एक इंसान, तो उसको जो है ना वो सजा दे या उसकी तरफ से जो है वो नाराज हो जाए उसकी बात ना मानने के ऊपर हमारी अकल। अब अगर हम अपनी अकल से सोचेंगे तो ये बात हमारी अकल में तो यही बात आती है कि अल्लाह को क्या पड़ी है, ठीक है ना, अल्लाह को क्या पड़ी है किसी को सजा देने की, तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट, है जो चाहे करो और जो ना चाहे ना करो, ठीक है ना, जो चाहे करो, जो चाहे जो ना चाहो ना करो, अल्लाह को क्या पड़ी है भाई, अल्लाह को क्या मिलता है, ठीक है ना, या अल्लाह के खजाने में कौन सी कमी हो जाएगी, ठीक है ना, अकल में तो यही बात आती है, आपके अकल में आती है, मेरी तो यही आती है। ठीक है, वो तो अल्लाह ताला ने भी मेहरबानी फरमा दी कि हमें हमारी अकलों के हवाले नहीं कर दिया, वरना हमारी अकल तो यही आती, जो चाहे करो या जो ना चाहो ना करो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा नहीं किया कि हमें हमारी अकलों के हवाले कर दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊपर से हिदायत का पूरा एक निज़ाम जारी फरमा दिया, पूरा एक निज़ाम जारी फरमा दिया कि अपनी किताबें भी भेजी, अपने पैगाम भी भेजा और अपने रसूलों के साथ भेजा, ठीक है, अपने रसूलों के साथ भेजा और उन रसूलों ने हमें बताया कि नहीं, बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा माफ करने वाला है, लेकिन सजा देने वाला भी है, राइट, कहार भी है, ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो नाराज भी होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत सजाएं भी देते हैं, ठीक है, तो शैतान भी अल्लाह का बंदा, ठीक है ना, इब्लीस भी अल्लाह का बंदा, काबिल भी अल्लाह का बंदा, और जो है वो फिरौन भी अल्लाह का बंदा और हामान भी अल्लाह का बंदा और नमरूद भी अल्लाह का बंदा और अबू जहल भी अल्लाह का बंदा, राइट, ये सब भी अल्लाह के बंदे थे, ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको छोड़ा नहीं कि ये तो इनकी तो कोई हैसियत नहीं, ये तो बहुत छोटे से हैं तो मैं चलो इनको छोड़ देता हूँ, अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा, ठीक है, तो जो ईमान वाले होते हैं वो इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ जजा देते हैं और बहुत इनाम देते हैं और गलतियों को माफ कर भी देते हैं, खुसूसन माफी मांगने वाले को तो माफ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सजा भी देते हैं, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सजा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कल एक शेख साहब की बात सुनने को मिली कि उन्होंने फरमाया है कि हम जन्नत का शौक जो है ना वो इसलिए नहीं रखते कि हम जन्नत के जो है ना वो मुस्तहिक हैं, हम जन्नत के मुस्तहिक हैं इसलिए नहीं, हम तो बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं है जन्नत के, लेकिन हम जन्नत में फिर भी जाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि द ओनली अदर ऑप्शन लेफ्ट इज जहन्नुम। अगर जन्नत में नहीं जाएंगे ना तो फिर जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा, बीच में कोई नहीं है। वो जो आराफ है ना, आराफ वो तो एक टेम्पररी स्टेशन है जन्नतियों के लिए। आराफ जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान की जगह है, वो तो एक टेम्पररी लोकेशन है, उसके बाद उसमें से लोगों ने जन्नत में ही जाना है। ठीक है, तो बेसिकली दो ही लोकेशन है, या जन्नत या जहन्नुम। तो जन्नत में हम क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि हम अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं, बड़ा समझते हैं, नेक समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि द ओनली अदर ऑप्शन दूसरा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम ही है, और जहन्नुम के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जहन्नुम को। राइट, कई सालों की जहन्नुम तो किया, सदियों की जहन्नुम तो किया, हम एक लम्हे की जहन्नुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्मों को मानना जो है ना ये हमारे ऊपर अखलाकी तौर पर भी लाजिम आता है, और कम अज कम जहन्नुम के खौफ से तो बिल्कुल ही लाजिम आता है। ठीक है, और ये जो दुनिया के अंदर फैली हुई अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे दुश्मन की फैलाई हुई है कि कुछ नहीं होता है ना, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत ये है, अल्लाह बहुत वो है, करो जो चाहो करो, कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता वाली आइडियोलॉजी है, या ये जो सोच है ना, ये शैतान की फैलाई हुई है, और ये सोच कुरान की नफी कर देती है, कुरान मजीद का इनकार कर देती है ये वाली सोच कि कुछ नहीं होता, क्योंकि कुरान मजीद में है कि होता है। कुरान मजीद में क्या है, अल्लाह के कलाम में क्या है, होता है। ठीक है, मैं यामल सुअ युज्जा भी है, जो कि आपको रट चुकी होगी ये वाली आयत, उम्मीद है। और उसके अलावा बेशुमार बहुत सारे वाकयात भी हैं, ठीक है, कि होता है, पिटाई होती है, सजा मिलती है। ठीक है, तो हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कुरान की नफी कर दें, और नफी करके जो है वो काफिर हो जाए, और काफिर होने के बाद जहन्नुम के मुस्तहिक बन जाए। तो अल्लाह ताला के ये हुक्म है रोजे रखना, जिस तरह रोजे रखना अल्लाह का हुक्म है, उसी तरीके से दूसरी चीजें भी अल्लाह का हुक्म है। रमजान मुबारक का जो इस्तकबाल है ना, रमजान मुबारक का जो इस्तकबाल है, यानी उसके लिए अपने आप को तैयार करना, जब कोई आता है आपके घर में तो आप उसका इस्तकबाल करते हैं, मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। तो कैसे इस्तकबाल करते हैं? आप कुछ तैयारियां करते हैं उसके लिए। ठीक है, आप उसके लिए जो है वो अपने आप को भी तैयार करते हैं, अपने घर को भी तैयार करते हैं, उसके लिए खाने भी तैयार करते हैं, उसके लिए ड्रिंक्स भी तैयार करते हैं, उसके लिए जो है वो बैठने का भी इंतजाम करते हैं। तो इसको कहते हैं इस्तकबाल करना। ठीक है, इस्तकबाल करने का मतलब ये नहीं होता कि बस जो है वो कोई आया और आकर के आपके घर में से गुजर गया, और तो आपने कहा कि हाँ भाई ये तो इस्तकबाल हो गया, मैंने इस्तकबाल कर लिया अपने मेहमान का। नहीं, यू डू समथिंग अबाउट इट, राइट? तो इसी तरीके से रमजान मुबारक का इस्तकबाल की जो उनवान है जिस पे कि आज हम ये बात कर रहे हैं, तो वो इस्तकबाल का उनवान जो है ना उसमें सबसे अहम चीज क्या है, उसमें सबसे अहम चीज क्या है रमजान मुबारक का इस्तकबाल करने की, सबसे अहम बात क्या है, अगर हम आपसे पूछें तो क्या ख्याल है? आप कुछ फरमाएं इसके बारे में लिख करके, चूंकि सबसे हम आवाज में तो नहीं सुन सकते, तो लिख करके अगर कोई बताए कि रमजान मुबारक के इस्तकबाल में सबसे अहम चीज क्या है। ठीक है, इन्होंने कहा नियत। माशाल्लाह, नियत वैसे जवाब इनका गलत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने लिखी तौबा। ठीक है, तौबा भी बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, नियत तौबा, नियत तौबा, माशाल्लाह, गुनाहों से तौबा। ठीक है, खुद को रमजान से पहले सुधारना। ठीक है, सुधारना तो रमजान में आके फिर क्या करेंगे सारा सुधारना पहले ही कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, अगर सुधार लें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो नियत जो है, ठीक है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही है, आमाल का दारोमदार नियत पर है। रमजान मुबारक में हमने क्या करना है, आमाल करने हैं ना, रोजे का अमल करना है, कुरान मजीद की तिलावत का अमल करना है, तरावीह का अमल करना है इंशा अल्लाह, राइट। और कुछ लोग जो है माशाल्लाह तफसीर के क्लासेस भी अटेंड करेंगे, सुनने की भी और समझने की भी कोशिश करेंगे, इनके अलावा भी और भी सदका खैरात के भी अमाल करेंगे। तो भाई इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, अगर नीयत जो है वो आपकी सही नहीं है तो फिर अमाल जो है ना वो करते रहेंगे लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हमारी जुबान में तो ठेंगा जो है वो कुछ ना मिलने को कहते थे, लेकिन आज जो है वो ठेंगे को जो है ना वो कुछ मिलना बना दिया गया, वो एक दूसरे को थम्स अप करते हैं। वेस्टर्न है, वेस्टर्न है ना अब तो गलबा पूरी दुनिया के ऊपर, तो जिसको हम ठेंगा कहते थे उसको थम्स अप करना शुरू कर दिया है। वो क्या है वो शेर कि खिरत को जुनू कह दिया, जुनू को खिरत, है जो चाहे तुम्हारी मर्जी है करो, राइट। वो शेर की जो है वो टांग वांग तोड़ करके आपके सामने पेश कर दिया है, तो ठेंगा मिलेगा। यानी आमाल कर करके आप 30 दिन गुजार देंगे, हम 30 दिन गुजार देंगे, लेकिन अगर नीयत सही नहीं होगी तो क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब नीयत क्या है? नीयत क्या है? अब ये नीयत जो है ना वो इतनी अहम चीज है कि जिसकी वजह से जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने ये हदीस मुबारक भी फरमाई, और हमारे जो मुहद्दिसीन थे उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी हदीसों की किताबों का आगाज जो है वो इसी एक हदीस से किया। क्यों? ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं कि खाली इसलिए नहीं कि नामाल का दारोमदार नीयत पर होता है, बल्कि इस वजह से भी कि नीयत को सही रखना ये आसान काम नहीं होता। नीयत सही करना और फिर उसको सही रखना, ये दो अलग अलग बात है। एक होता है नीयत, सही नीयत करना, और दूसरी चीज होती है फिर उसको मेंटेन भी करना। ये दो अलग अलग काम है, ठीक है। ये दोनों काम जो है ना ये बहुत मुश्किल काम है। तो रमजानुल मुबारक में सही नीयत क्या और गलत नीयत क्या? किसी चीज को सही रखने के लिए, उम्मीद है कि कुछ हजरात खवातीन लिख भी रही होंगी इन चीजों को, ठीक है। नीयत को सही करने के लिए किस चीज की जरूरत है, ठीक है, नीयत को सही करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वो ये है कि हमें कुछ अंदाज़ा हो कि गलत नीयत क्या होती है, गलत नीयत क्या चीज़ होती है, उसका इल्म होना। सही इल्म, आपने सही जवाब दिया, किस चीज़ का इल्म होना कि गलत नीयत क्या होती है, ठीक है। सही नीयत क्या होती है ये भी ज़रूरी है, लेकिन गलत नीयत क्या होती है ये भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? है? वैसे तो अब तक तो हमने यही पढ़ा था या शायद हमने यही सुना था कि सही नीयत क्या होती है ये मालूम कर ले बस काफी है, लेकिन गलत नीयत क्या होती है ये मालूम करना क्यों जरूरी है? गलत नीयत क्या होती है ये मालूम करना क्यों जरूरी है? उसकी वजह आपसे पूछने की बजाय आज खुद ही बता देता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को बनाया है हमारा दुश्मन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को बनाया है हमारा दुश्मन। तो शैतान का काम क्या है, वो क्या करता है अपनी दुश्मनी में? वो आकर के हमें तलवार से नहीं मारता। शैतान के पास कोई तलवार नहीं है, शैतान के पास कोई तीर नहीं है, शैतान के पास कोई मिसाइल नहीं है कि वो हमारे ऊपर मिसाइल बरसा देता है तो उस वजह से हम मर जाते हैं। तो ये उसकी दुश्मनी का तरीका है कि मिसाइल से हमें मार दे, तीर से हमें मार दे, या अपनी बातों के जरिए से हमें मार दे, है ना। वो होता है ना दिल तोड़ देता है दुश्मन बातें करके, तो शैतान हमारा दिल नहीं तोड़ देता अपनी टॉन्ट्स के जरिए से और टीज करके, शैतान ये सारे काम नहीं करता। शैतान हमारी दुश्मनी कैसे करता है, शैतान का क्या तरीका है अपनी दुश्मनी हमारे ऊपर लगाने का? उसका तरीका ये है कि वो गलत नीयत को सही नीयत बना के पेश कर देता है, हमारे सामने पेश कर देता है। और चूंकि हमें नहीं पता होता कि ये गलत नीयत क्या चीज थी, तो हम उसको सही नीयत के तौर पे एडॉप्ट कर लेते हैं, हम उसको सही नीयत के तौर पे एडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या समझते हैं, हाँ भाई सही नीयत जो मौलवी साहब ने बताई थी या हमने किताब में पढ़ी थी तो वो तो सही नीयत है जो मौलवी साहब ने बताई थी किताब में, है ना। लेकिन हमें चूंकि गलत नीयत का नहीं पता होता कि ये गलत नीयत है, तो इस वजह से हम शैतान के जो जहन में डाले हुए ख्याल होते हैं हम समझते हैं कि हाँ ये भी सही नीयत है, ये भी सही नीयत है। और इस तरीके से शैतान जो है वो अपनी गलत नीयत को हमारी सही नीयत के ऊपर गालिब कर देता है, गालिब कर देता है, और हमारी सही नीयत जो थी ना वो कहीं गुम घुमा जाती है, दब दबा जाती है, राइट, भूली बसरी हो जाती है, और गलत नीयत जो है वो हमारे ऊपर गालिब आ जाती है। अब उसके बाद आप 30 दिन तक जो है वो मजे मजे के काम भी करते हैं, नियत नेकी के काम भी करते हैं और इबादतें भी करते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन नियत जो होती है ना वो सही नहीं होती, क्योंकि शैतान ने अपना दाव आपके ऊपर कर दिया, ठीक है ना, अपना दाव लगा दिया हमारे ऊपर, आपसे मुराद मैं भी, ठीक है, गलत नियत का मालूम होना इस वजह से जरूरी। अगर शैतान ना होता, अगर शैतान ना होता तो फिर हमें जरूरत नहीं थी गलत नीयत को का इल्म हासिल करने की, लेकिन मसला ही सारा का सारा क्या है कि शैतान है हमारे यहाँ। शैतान की बहुत बड़ी कामयाबी क्या है कि शैतान है ही नहीं, शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे एक दोस्त कहने लगे, आप में से एक दोस्त हमारे हैं, कि हम पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात हुई दीन के बारे में और आजकल के फितनों के बारे में, तो हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो है ना ये कंस्पिरेसी थ्योरी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। कंस्पिरेसी थ्योरी सुना है नाम? वैसे तो ये एक हॉलीवुड की फिल्म का नाम था, ठीक है, और उसमें उसने कंस्पिरेसी थ्योरी को जो है वो ऐसा साबित किया था कि फिर उसके बाद सारी दुनिया ही कंस्पिरेसी थ्योरी है, वो हर चीज ही कंस्पिरेसी थ्योरी बन गई। लेकिन ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो उन भाई ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी सी कंस्पिरेसी थ्योरी को जो है ना वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कि क्या मतलब है कंस्पिरेसी थ्योरी? कंस्पिरेसी थ्योरी का मतलब ये होता है कि समवन आउट देयर इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस, समवन आउट देयर इज प्लानिंग अगेंस्ट अस, ठीक है ना, समवन इज प्लानिंग अगेंस्ट अस, ठीक है ना, तो वो हमारे खिलाफ जो है ना वो अपने तालीमी निज़ाम के जरिए से प्लान कर रहे हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, वो जो है वो अपने मीडिया के जरिए से हमें नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या वो जो है वो और अपने खाने पीने की जो उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं उनके जरिए से हमें नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि भाई देर इज समवन आउट देयर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस। पाकिस्तान में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, सब ठीक है, राइट, जो खराब है वो बस है, बस ऐसी खराब है, वरना कोई हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे ही है सब कुछ, ठीक है। तो इस आजिज ने इनसे जब ये बात सुनी था तो मैंने ये कहा उनको कि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी का इनकार है ना, ये दरअसल किसका इनकार है, कोई आप में से अगर बताए जल्दी से। ये तो हो रही थी इस्तकबाले रमजान की क्लास, आपने शायद ऐसे इस्तकबाले रमजान की क्लास जो है वो ना सुनी होगी पहले कभी। जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी का इनकार है ना, ये दरअसल शैतान का इनकार है, ये दरअसल शैतान का इनकार है, और शैतान का इनकार याद रखें ये कुरान का इनकार है, शैतान का इनकार कुरान का इनकार है, और कुरान का इनकार ये इंसान को ईमान से फारिग कर देता है, खारिज कर देता है, और हमेशा हमेशा की जहन्नुम का मुस्तहिक बना देता है, ठीक है। तो हॉलीवुड का शुक्र भी अदा कर देना चाहिए कभी कि उसने कंस्पिरेसी थ्योरी पे फिल्म बना दी, इसलिए नहीं कह रहा कि आप जाके फिल्म देखें, ठीक है ना। ईमान वाले की नजर ही अलग होती है, ईमान वाला जो कुरान पर ईमान रखता है ना, सर्टनटी के ऊपर बात हुई ना हमारी क्लास के अंदर, कुरान के ऊपर सर्टनटी, इवन काफिर भी ये बात जानता है कि मोमिन को तो कुरान के ऊपर सर्टनटी है, यकीन है उसको कुरान की सच और हक्कानियत के ऊपर, तो शैतान का इनकार कैसे कर सकता है कोई, ठीक है। तो भाई शैतान है, कंस्पायर कर रहा है हमारे खिलाफ, और शैतान के जो चेले हैं, जो उसके जो एजेंट्स हैं, वो मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों की शक्ल में भी हैं और इंसानों की शक्ल में भी हैं, ठीक है ना। तो उसका जो सबसे पहला हमला होता है हमारे ऊपर वो नीयत, गलत नीयत को सही नीयत बना करके पेश करना। तो अब गलत नीयत क्या होती है आमाल के अंदर, गलत नीयत क्या होती है बताएं जरा, आप ही बताएं। आमाल कर रहे हैं लेकिन गलत नीयत क्या होती है उसके अंदर, इन्होंने लिखा रियाकारी, बेशक आपने सही जवाब दिया, लेकिन इसके अलावा और गलत नीयत क्या होती है? कि आप आमाल क्यों कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, राइट, लोगों की वाहवाह हासिल करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, इसको रियाकारी कहते हैं, इसको खुफिया शिर्क कहते हैं, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है ना, शिर्क असगर, रियाकारी। और गलत नीयत क्या होती है, जिसका कि आज हमारे हमसे बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक है, ठीक है, वो क्या होती है, रियाकारी। तो माशाल्लाह सभी बता रहे हैं, एनीथिंग फॉर द डिसप्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। नहीं, वो तो हो गई ना रियाकारी में, अपनी समझ के मुताबिक और अपनी तस्कीन के लिए, अपनी तस्कीन के लिए नहीं, और बताएं, अपने नफ्स को खुश करने के लिए। आज के हिसाब से जो हमारे ऊपर डिलेमा आया हुआ है, उसके हिसाब से बताएं कि गलत नीयत क्या होती है। डाइटिंग वो पुराने जमाने की गलत नीयत हो गई, डाइटिंग वाली नीयत, रमजान में वेट कम करने वाली प्लानिंग, वर्ल्डली सक्सेस, नफल अमल की ज्यादा अहमियत। नफल अमल को भाई, रोजा तो फर्ज है ना, तो फर्ज तो रोजे तो सारे फर्ज रख रहे होते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करना, टू लुक लाइक अ गुड मुस्लिम। अच्छा चले, माशाल्लाह आप लोगों के सवाल, आप लोगों के जवाब जो है वो गलत नहीं है, सही जवाब है, लेकिन वो मिसिंग जवाब है जो कि मैं चाह रहा था आपसे सुनना। वो मिसिंग जवाब ये है कि यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज योर पेरेंट्स वर डूइंग इट, यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज द सोसाइटी अराउंड यू इज डूइंग इट, ठीक है ना। आप आमाल क्यों कर रहे हैं, अम्मी करती हैं, अब्बू करते हैं, राइट, दद्दा करती हैं, नन्ना करते हैं, नाना करते हैं, राइट, मामू करते हैं, चाचा करती हैं, खाला करती हैं, सभी करते हैं, इस वजह से मैं भी कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो नियत है ना कि मेरे आबाओ अजदाद ये काम करते थे, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूं, ये नियत, इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस नियत जो कि आपको मुसलमान बनाए इस नियत की वजह से, ठीक है ना, जो आपको मोमिन बनाए इस नियत की वजह से। ये नियत हिंदू की भी नियत होती है, वो भी अमाल कर रहा होता है या कर रही होती है, क्योंकि उसकी सोसाइटी ये अमाल कर रही होती है जो वो कर रही है, ठीक है। क्रिश्चियन, वो भी अमाल कर रहा होता है, बहुत सारे, राइट, हल अता का हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौम इज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, लेकिन क्या फरमाया, तस्ला नारन हामिया, आमिलतुन नासिबा, थक थक करके अमल कर रहा होता है, तस्ला नारन हामिया, वो फेंक दिया जाएगा खामिया वाली नार के अंदर, अमाल करने वाला इंसान। और वो किस लिए अमाल कर रहा है, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा अमाल करते हैं और उनके अम्मा अब्बा ने सिखाया है कि ये जो है ना वो अल्लाह को राजी करने के अमाल है, तो वो अल्लाह को राजी करने के लिए अमाल कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसने ये तहकीक नहीं करी कि ये जो मैं अमल कर रहा हूं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है या ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये बस सोसाइटी ने अडॉप्ट किए हुए हैं, सोसाइटी की वजह से मैं काम कर रहा हूं, ये अल्लाह का हुक्म है इस वजह से मैं अमल कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ी गलत नीयत होती है कि जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स अराउंड इज डूइंग इट, सब लोग कर रहे हैं इस वजह से अमल कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह का हुक्म। देखें इसमें फोकस किस चीज के ऊपर है, इसमें फोकस, इसमें एम्फेसिस, इसके अंदर जो है वो, यानी ताकीद किस चीज के ऊपर है, अल्लाह के हुक्म के ऊपर ताकीद है कि मैं ये अमल इसलिए कर रही हूं या कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और मुझे अल्लाह के हुक्म पे अमल करना है, चाहे मेरे साथ रहने वाले सारे लोग भी कर रहे हैं या मेरे साथ में रहने वाला कोई एक शख्स भी नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे तो करना है, चाहे कोई एक शख्स भी ना कर रहा हो उसके ऊपर अमल, या चाहे सारे लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हो, लेकिन मैंने क्यों करना है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। यहां पे किस चीज के ऊपर सारा का सारा फोकस पड़ गया, अल्लाह के हुक्म के ऊपर पड़ गया। आमाल की नीयत क्या है, अल्लाह का हुक्म है, इस वजह से मैं काम कर रहा हूं। आपको शायद इसमें कोई फर्क नजर ना आ रहा हो, ठीक है, लेकिन गौर करें, सोचें और अपनी नीयत को टटोलें, ठीक है, तो आज आ जाएगा ये नजर फर्क, ठीक है। तो अल्लाह का हुक्म जो है ना, ये इस वक्त जो है ना, कहा था ना कि ये इस वक्त, इस दौर, इस जमाने के हिसाब से जवाब चाहिए था आपसे। इस जमाने के हिसाब से जवाब ये है कि आप सारे दीनी आमाल करें लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से नहीं करें, अल्लाह के हुक्म की वजह से नहीं करें बल्कि किसी और रीजन की वजह से दीनी आमाल करें। करें आप हज करें, जितने करने करें, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की हैसियत से हज करना, ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी मुसलमानों में, नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, तो रमजान की तैयारी के इसको अल्लाह का हुक्म समझना, सबसे पहले नीयत की इसलाह करना, इसको अल्लाह का हुक्म समझना, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म का फिर करने के ऊपर सवाब, अल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत नवाजेंगे, बहुत नवाजेंगे, बहुत नवाजेंगे, और अगर नहीं करूंगा तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बल्कि बहुत जबरदस्त किस्म की उसके ऊपर सजा भी है। तो अब जो है वो आप दो चार हदीसें सुन लें और फिर उसके बाद हम आपको वो बता देंगे जिसकी हमने नियत करी थी इस क्लास से पहले। तो रमजान मुबारक के रोजे का बयान, इसमें चंद एक हदीसें आपके सामने आज पढ़ रहा है तसहील बहश्ती जेवर किताब से, जो कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बहश्ती जेवर का एक अडेप्टिड वर्जन है इस दौर के कॉन्टेम्प्रेरी मसाइल के साथ। तो इसमें हजरत ने जो कुछ अहादीस नकल करी हैं या जो उलमा ने इसको अपडेट किया है, तो उन्होंने ये वाली अहादीस शायद हो सकता है ऐड करी हो। तो उसमें फरमाया कि जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जो रमजान की आखिरी रात तक मुसलसल खोले रहते हैं, और जो भी मुसलमान रमजान की रातों में से किसी रात में नमाज पढ़ता है उसके लिए हर रकत के बदले 2,500 नेकियां लिखी जाती हैं, और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल बना देते हैं जिसके 60 दरवाजे होंगे। फिर जब रोजादार पहला रोजा रखता है तो गुज़श्ता रमजान से लेकर इस रमजान तक उसके जितने सगीरा गुनाह किए हैं उसने, वो सब माफ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए हर रोज 70,000 फरिश्ते सुबह की नमाज से लेकर गुरूब आफताब तक मगफिरत की दुआ मांगते रहते हैं, और रमजान की रातों में जो नमाजें पढ़ता है हर रिकत के बदले जन्नत में उसको ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि जिसके साये में 500 बरस तक सवार चल सकता है। 500 ईयर्स हॉर्स राइडर जिस दरख्त के साये में चल सकता है, उतना बड़ा दरख्त जो है ना, वो उसको हर रिकत के बदले जन्नत में अता किया जाता है रोजेदार को। क्या तो ये फजाइल रमजान की बातें। तो और फरमाया कि शुरू साल से आखिर तक रमजान के लिए जन्नत से, रमजान के लिए शुरू साल से आखिर तक रमजान के लिए जन्नत सजाई जाती है, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें शुरू साल से आखिर तक रमजान के रोजेदारों के लिए बनाव सिंगार करती हैं। जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह अपने बंदों को मेरे अंदर दाखिल फरमा दीजिए, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें कहती हैं कि ए अल्लाह अपने बंदों में से हमारे लिए खाविंद मुकर्रर फरमा दीजिए। तो जिस शख्स ने इस माह मुबारक में किसी मुसलमान पर तोहमत ना लगाई और कोई नशा आवा चीज ना पी, अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देगा, और जिसने इस माह में किसी मुसलमान पर तोहमत लगाई या कोई नशा आवा चीज पी ली, अल्लाह ताला उसकी साल भर की नेकियों को मिटा देगा। ठीक है, यानी इसकी तशरीह में लिखा कि नेकियों की बरकतें मिटा दी जाएंगी, खुद नेकियों का मिटाना इस हदीस में मुराद नहीं है। यानी नेकियों की जो उसको फायदे मिलने थे वो मुसलमान पर तोहमत लगाने से या कोई नशा आवर चीज पी लेने से, जिससे कि किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ इसका अपना ही नुकसान हो रहा है, ये दोनों चीजें इतनी नापसंदीदा हैं कि इसकी नेकियों के जितने फायदे इसको मिलने थे वो फायदे इसके मिटा दिए जाते हैं। ठीक है, ये रमजान मुबारक की सैंक्टिटी है, ये रमजान मुबारक का तकद्दस है कि जिसकी वजह से इसके अंदर किए हुए गुनाहों की सजा भी ज्यादा होती है, जिस तरह इसके अंदर किए हुए नेक आमाल की जजा ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा बहुत अहम एक और, के फरमाया कि रमजान के महीने में तकवा इख्तियार करो इसलिए कि ये अल्लाह ताला का महीना है। तोहमत का मतलब होता है किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, ठीक है, कि किसी ने ये वाला धोखा दिया, हालांकि उसने धोखा नहीं दिया था। इसको कहते हैं किसी के ऊपर तोहमत लगाना। तो रमजान के महीने में तकवा इख्तियार करो, इसलिए कि ये अल्लाह ताला का महीना है। यानी तकवा ये नहीं है कि सिर्फ रमजान में इख्तियार करो, लेकिन ये एक ऐसा खसूसी वक्त है कि जिसको कि अल्लाह ताला ने अपने साथ अपने लिए खास कर लिया है। तो इसमें गुनाह का काम करोगे तो तुम्हें ज्यादा सजा मिलेगी, ज्यादा नाराजगी मिलेगी। जैसे जगहों का भी एतबार होता है, तो मक्का मुकरमा में जा करके गुनाह करना, उसके ऊपर जो है वो ज्यादा बड़ी सजा है। जिस तरह मक्का मुकरमा में जा करके इबादत करने की जजा ज्यादा है, उसी तरह सजा मक्का मुकरमा में भी ज्यादा है। उसी तरीके से औकात भी होते हैं, तो टाइम एंड प्लेस दोनों की हमारे दीन के अंदर हैसियत है कि इस जगह के हिसाब से जजा और सजा बढ़ जाती हैं, और वक्त के हिसाब से भी जजा और सजा बढ़ जाती हैं। तो रमजान मुबारक उन औकात में से एक अहम तरीन वक्त है कि जिसके अंदर जजा बढ़ जाती है और सजा भी बढ़ जाती है। आगे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 11 महीने रखे हैं जिनमें तुम खाते पीते और लज्जत अंदोज होते हो, और अपने लिए एक महीना मुकर्रर फरमाया है। सो डरो रमजान के महीने से कि बेशक वो अल्लाह ताला का महीना है। रमजान के महीने से डरो का मतलब कि इसमें जो गुनाह की सजा होती है उससे डरो। रमजान कोई ऐसी भयानक या डरावनी चीज नहीं है कि उससे डरो, बल्कि इसके अंदर गुनाह करोगे तो इसकी सजा से डरो। ये अल्लाह ताला ने महीना अपने लिए खास किया है कि इसमें तुम्हें बहुत ही इसमें भी पूरा महीना नहीं, बल्कि इसमें भी सिर्फ सुबह सादिक से लेकर के गुरूब तक का जो वक्त है, सिर्फ इस वक्त में जो है वो जो तुम्हारे लिए जायज शहवतें थी, खाना पीना ठीक है और बीवी के पास जाना, इससे जो है वो तुम्हें अल्लाह ताला ने रोक दिया है। ठीक है, 24 घंटे का रोजा भी अगर हो जाता ना, और पूरे 30 दिन का भी अगर रोजा हो जाता, तो भी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत का भी हक अदा नहीं कर सकते। एक नेमत का भी, छोटी छोटी जिसको हम छोटी नेमत कहते हैं, उसका भी हक हम अदा नहीं कर सकते थे। अगर पूरे 30 दिन 30 × 24 आवर्स अगर रोजे का हुक्म दे दिया जाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ, सब कुछ वही करते हैं हमारे लिए, और हमसे क्या क्या तकाजा है, सिर्फ सुबह सादिक से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक, है ना, वो भी सर्दियों के मौसम के अंदर दिन वैसे ही छोटे हो जाते हैं। ठीक है, सर्दियों के मौसम के अंदर जो है वो सर्दियां होती हैं और दिन जो है वो लंबे भी हो तो भी पता नहीं चलता, और गर्मियों के मौसम में जो है वो दिन छोटे हो जाते हैं, बेशक गर्मियां होती हैं लेकिन दिन छोटे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला देना चाहते हैं, अगर हम लेना ना चाहें तो
हाँ
अच्छा। फिर उसके बाद जो टाइम, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि क्लास का टाइम तकरीबन खत्म ही हो गया है, तो फिर हमने क्या किया, हमने बुकरातियत अपनी झाड़ी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि नीयत की इसलाह, ठीक है ना, इस वजह से नहीं कि रेले में चल करके काम करना है क्योंकि अम्मा अब्बा करते हैं और ये मेरा खानदानी निजाम है इस वजह से मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह के हुक्म की वजह से मैं काम कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो फोकस है वो हुक्म के ऊपर आए। इस दौर के अंदर आमाल करना इतना मुश्किल काम नहीं है, आमाल करना बहुत आसान हो गया है मुसलमानों के लिए, इतनी सहूलतें हैं, इतनी हर तरफ से जो है वो आपको हेल्प की जा रही है। मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों की तरफ से भी आमाल की तरह के लिए जो है ना वो सपोर्ट मिल रही है इस दौर जमाने के अंदर। किस चीज चैलेंज किया है हमारे लिए, चैलेंज ये है कि हम आमाल क्या अल्लाह के हुक्म की वजह से कर रहे हैं या रेले की वजह से कर रहे हैं, या जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स वाज डूइंग इट इस वजह से हम कर रहे हैं हुक्म। ठीक है, तो तौबा वोबा बाद में कीजिएगा, पहले तो ये तस्लीम करें कि जी अल्लाह का हुक्म सबसे अहम चीज होती है। फिर उसके बाद जो है ना, जो मैंने गलती करी है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है, ए अल्लाह मैं उसके ऊपर नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ठीक है, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपके लिए माफ करना बहुत आसान काम है, मेरे लिए माफी मांगना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि मैं आपके हुक्मों को, आपका हुक्म समझती नहीं हूं, मैं आपके हुक्मों को ऐसी चीज समझती नहीं हूं कि जिसके ऊपर ना अमल करने से जो है ना वो आप नाराज होते हैं और आप सजा देते हैं, मैं ऐसा समझती नहीं थी। आज मैंने इस बात को समझा है कि आपके हुक्म जो है ना ये तो मेरे लिए लाजिम थे और ना मानना उनको ये मेरी सजा का मूजिब था। अब मैं नादिम हूँ अपनी गलती के ऊपर, जो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में करी है, मैं उसके ऊपर नादिम हूँ और आपसे मैं माफी मांगती हूँ। अल्लाह के लिए माफ करना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए माफी मांगना मुश्किल है। हम माफी मांगते नहीं हैं क्योंकि हमें माफी मांगने का पता ही नहीं है कि ये चीज किस चीज से माफी मांग रहे हैं आप। गलत किया हो तो उससे माफी मांगेंगे ना, हम तो गलत को सही समझ के कर रहे होते हैं तो कैसे माफी मांगेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आधा घंटा तो क्लास का उसमें निकाल दिया। फिर उसके बाद जो है हमने रमजान मुबारक के फजाइल के ऊपर आपको दो चार जो है वो हदीसें सुना दी हैं। और उसके बाद आखिरी चीज इस क्लास में बस ये करनी थी कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किताब के अंदर ये मसाइल लिखे हुए हैं और यहाँ लिखे हुए हैं, तो इधर जा करके जो है ना अब आपने इनको पढ़ना है। ठीक है, या इन चीज़ों के बारे में आपको कॉन्शियस रहना है। वो ये है कि रोज़ा होता क्या है, रोज़े की तारीफ़ क्या है, ठीक है, ये मालूम होना ज़रूरी है। ये सबसे आसान चीज़ हम पढ़ देते हैं कि सुबह सादत से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नीयत से खाने पीने और हम बिस्तरी से इज्तनाब करने को शरीयत में रोज़ा कहते हैं। ये है रोज़े की तारीफ। ठीक है, रोज़ा किन के ऊपर फ़र्ज़ है, ये बालिग होना ज़रूरी है, ठीक है ना, नाबालिग के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, मजनून दीवाने के ऊपर फर्ज नहीं है। ठीक है, और जिसके ऊपर जो जो अल्लाह ताला ने उजर रखे हैं रोजा छोड़ देने के, अगर कोई ऐसे उजर की हालत में है तो उसके ऊपर भी फर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी तफसीलात जो है वो आपको किताबों में मिलेंगी और उलमा से पूछ करके भी आपको ये तफसीलात मालूम हो जाएंगी। तो रोजा होता क्या है ये मालूम होना, रोजा किस पर फर्ज है, रोजे का वक्त ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि माशाल्लाह सभी रख रहे होते हैं। वैसे अनफॉर्चुनेटली रियलिटी इज कि बहुत सारे मुसलमान फर्ज रोजा नहीं रखते। ठीक है ना, जो रखते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो शायद ये गुमान करते होंगे कि जिस तरह वो रखते हैं उसी तरह बाकी भी रखते हैं। जैसे है अलमरु यकीसु अला नफ्सिही, इंसान अपने ऊपर ही दूसरों को गुमान करता है, तो हम समझते हैं कि सब रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं रोजा नहीं रखते हैं, और मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से कि एग्जाम है ना, एग्जाम है, इस वजह से मैं पढ़ाई कैसे करूंगा या मेरा बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, तो उसको रोजा छुड़वा दिया, हालांकि वो बालिग था, आकिल था, बालिग था, रोजा फर्ज था, एग्जाम की वजह से रोजा छुड़वा दिया। या ये कि सेहत थोड़ी सी खराब हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, तो इस वजह से रोजा जो है वो छुड़वा दिया अपने बच्चे का, हालांकि वो बालिग और आकिल था या आकिल थी, उसका रोजा छुड़वा दिया। या ऐसी जो है ना जिसकी के शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है रोजा छोड़ने की, ऐसे रीजंस की वजह से लोग जो है वो रोजा छोड़ रहे होते हैं। या ये कि इस वजह से रोजा छोड़ रहे होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से जो है ना वो अपने मामलात को आप चेंज करके ऐसे अडेप्ट कर सकते हैं कि इवन गर्मी के मौसम के अंदर भी रोजा रखा जा सकता है, उनको ये बातें नहीं पता होती, तो इस वजह से वो कहते हैं कि बस इतनी गर्मी में कैसे रोजा रखा जा सकता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से वो रोजा छोड़ देते हैं। तो इन मसाइल को जो है ना वो फिर हम एक क्लास में या 10 क्लासों में भी इस तरह से हम बयान नहीं कर सकते। इसके लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये मसाइल लिखे हुए हैं, तो बहश्ती ज़ेवर किताब के अंदर बहुत अच्छे से ये मसाइल लिखे हुए हैं। तो रोजे की नियत के मसाइल, ये भी अगर किसी को नियत के ऊपर कोई इश्काल हो तो वो किताब के अंदर देखे और नहीं समझ में आ रहा तो फिर उलमा से पूछे। नियत के मसाइल हो गए, चांद देखने का बयान, ये भी कम अज कम इतना पता होना चाहिए हम लोगों को कि खाम खा के एतराजात ना किया करें हम। ठीक है कि भाई वो ये तो दूसरी तारीख का चांद नजर आता है, हालांकि आज जो है वो पहली तारीख उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन ये तो देखने में दूसरी तारीख का चांद नजर आता है। तो हदीस मुबारका के अंदर है कि कयामत जब करीब होगी तो लोग ऐसे कहा करेंगे कि ये तो कल का चांद मालूम होता है। ठीक है, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है खामखा की इस तरह की बहस के अंदर पढ़ने की। अच्छा, एक और अहम चीज है कि रोजा कब जो है ना वो कजा करना होता है, यानी कब आपका रोजा जो है वो टूटता है किसी वजह से, तो क्यों टूटता है, ठीक है, और कब टूटने की वजह से सिर्फ एक रोजा कजा करना होता है, और कब जो है वो रोजा टूटता है तो कफारा देना होता है। ठीक है, तो कजा रखना एक अलग मसला है कि बस एक रोजा आपका किसी वजह से टूट गया तो अब आप उसकी एक कजा करेंगे रमजान मुबारक के बाद, और एक होता है कि आपने तोड़ा रोजा कोई ऐसा अमल करके कि जो कि मना था लेकिन आपने उस अमल को किया, जानबूझ के किया, या और उसकी जो तफसीलात हैं वो किताबों में मौजूद हैं, तो उसके बाद फिर जो है ना वो कफारा अदा करना पड़ता है रोजे का। एक कजा से काम नहीं चलता। और कफारा रोजे का क्या है? 2 महीना लगातार रोजे रखना, ठीक है। कजा रोजा सिर्फ एक होता है, एक रोजे के बदले में, और वो लगातार वगैरह का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक के बदले में एक, ठीक है। लेकिन कफारा ऐसा नहीं है, बल्कि लगातार जो है वो 60 दिन के 60 रोजे रखने, ठीक है। और ये जो है ना कि 60 मिसकिनों को खाना खिला देना, ये उस वक्त है जबकि जेन्युइनली कोई ऐसा शरी रीजन हो कि आप 60 रोजे नहीं रख सकते हैं, तब जो है वो 60 मिसकिनों को खाना खिलाने से उसका कफारा अदा होगा, वरना नहीं। वरना ऐसा नहीं है कि नहीं जी बहुत मुश्किल है तो मैं कैसे रखूंगा 60 रोजे, जिस वजह से मैं 60 मिसकिनों को खाना खिला देता हूँ। भाई आप कुछ भी ना करें, आपको अगर अल्लाह ताला के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करना है तो आप कुछ भी ना करें, राइट। लेकिन ये तो नहीं ना कि अपनी तरफ से शरीयत बना ली और फिर जो है वो ऐसे 60 रोजा रखने के बजाय जो है वो 60 मिसकिनों को खाना खिला दिए, क्योंकि पैसे पैसा बड़ा है, ठीक है, पैसा बहुत था तो 60 मिसकिनों को खाना खिला दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। तो ये अल्लाह के अहकाम हैं, इनके साथ हम खेल नहीं सकते। अच्छा, मकरूहात व मुफसदात का बयान, ये भी किताब के अंदर बड़ा अहम मौजू है कि किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। तो ये भी किताब में बड़ी तफसील के साथ, हम ये चीज़ें एक्चुअली अपनी शाम वाली क्लास के अंदर पहले पढ़ चुके हैं बड़ी तफसील के साथ, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, अगर कोई चाहे तो वेबसाइट पर जाकर रिकॉर्डिंग भी तलाश कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको पॉइंट करने की। किन सूरतों में सिर्फ कजा वाजिब है और किन सूरतों में कफारा वाजिब है, ये भी बड़ी तफसील के साथ मसाइल लिखे हुए हैं, जिन वजूहात की बिना पर रोज़ा तोड़ना जायज़ है, ठीक है। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि भाई हमें पता नहीं होता कि जायज़ था रोज़ा तोड़ना, अब हम जो है वो लगे हुए हैं अपने यानी मौत के करीब पहुंच गए, पता चला हालांकि रोज़ा तोड़ना जायज़ था। तो ये इल्म भी जो है वो किताब में मिल जाएगा और तफसील उलमा आपको समझाएंगे जिन्होंने बाकायदा से इल्म हासिल किया है। अच्छा, और फिर कुछ जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी मसाइल भी इन्होंने लिखे हुए हैं तस्कीन बहशी देवर की किताब के अंदर, के जो हमारे पठान भाई होते हैं अक्सर वो निस्वार खाते हैं, तो शायद मेरे ख्याल में पठानों के अलावा भी लोगों ने शायद निस्वार खानी शुरू कर दी है, तो निस्वार का इस्तेमाल जो है वो जायज़ नहीं है, तो इससे जो है ना वो एहतराज़ ज़रूरी है। ये निस्वार का हुक्म लिखा हुआ है बाकायदा, इनहेलर का हुक्म, क्योंकि आजकल एस्मा वगैरह भी जो है बहुत कॉमन हो गया है, तो इनहेलर के बारे में लोगों को सवाल होता है कि भाई इनहेलर ले सकते हैं कि नहीं, तो फरमाते हैं मसला लिखा हुआ है कि रोजे की हालत में इनहेलर इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है, ठीक है। खून निकलवाना रोजे को फासिद नहीं करता, रोजे की हालत में इंजेक्शन के जरिए से खून निकलवाना मुफसिद नहीं है, अलबत्ता अगर खून निकलवाने से ऐसी कमजोरी का खतरा हो कि रोजा रखने की ताकत ना रहे तो फिर ये मकरूह है, ठीक है। तो ब्लड ड्रॉ करना जो है ना इससे रोजा नहीं होता, ठीक है, इंजेक्शन से रोजा फासिद नहीं होता। रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज है, इससे रोजा फासिद नहीं होता, क्योंकि रोजा इस चीज से फासिद होता है जो किसी मुनफिज यानी किसी सुराख के जरिए से मेदे या दिमाग में पहुंच जाए, मेदे में पहुंच जाए या दिमाग में पहुंच जाए, ऐसे इंजेक्शन से जो है ना वो रोजा फासिद होता है। और इंजेक्शन से दवा बजरिया मुनफिज नहीं जाती, तो यानी सॉरी यानी इंजेक्शन से जो है वो सुराख के जरिए से ये चीजें नहीं जारी होती, बल्कि ये रगों का इंजेक्शन होता है, वीनल इंजेक्शन जिसको कहते हैं, या मसामात के जरिए से मेदे में पहुंचती है, तो इंजेक्शन से रोजा फासिद नहीं होता। ग्लूकोज की जो ड्रिप लगाते हैं या इस किस्म की जो भी ड्रिप्स वगैरह लगवाना, तो उसमें लिखा हुआ है कि बिला जरूरत सिर्फ ताकत और ठंडक हासिल करने के लिए रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़ाना मकरूह है। और भी चंद एक मसाइल हैं, तो टाइम चूंकि काफी ओवर हो चुका है, इस वजह से हम मजीद नहीं पढ़ेंगे। मकसद इस क्लास का था इस्तकबाले रमजान के लिए थोड़ा सा पंप अप कर देना आपको, जिसमें सबसे अहम चीज वो नियत है, और दूसरी चीज जो है वो उसके फजाइल के बारे में एक दो चीजें आपको हमने हदीसों से सुना दी कि ये अल्लाह का का महीना है, और इसके अंदर जो है वो जिस तरह से सवाब बढ़ जाता है उसी तरीके से इसकी सजा भी जो है वो बढ़ जाती है। और फिर इतना आपको बस पॉइंटर्स देने थे कि किताब के अंदर ये मसाइल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, इन चीज़ों का हमें इस्तेज़ार होना चाहिए कि रोज़े में फासिल होना और कज़ा होना और कफ़ारा, ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रहे तो हम इनके इनसे कॉन्शियस रहें। और फिर अगर हमें कोई सवाल पेश आ जाए तो हम किताब में भी देख सकते हैं और हम उलमा से भी पूछ लें। ठीक है, यही इस क्लास का मकसद, अल्लाह ताला उसको हमसे कबूल फरमाए। क्या पेन किलर्स वाले इंजेक्शन से रोज़ा मकरूह होता है, लाइक फॉर टूथ एक? पेन किलर वाले इंजेक्शन का हुक्म जो है ना वो वैसे तो इंजेक्शन का हुक्म आ गया ना, ठीक है, कि इंजेक्शन के ज़रिए से जो है ना वो किसी मुनफस से जो है वो चीज़ दाखिल नहीं हो रही होती, ठीक है, तो इस वजह से रोज़ा जो है ना नहीं होता फासिल। तो अब इसमें पेन किलर वाला इंजेक्शन हो या जो है वो किसी और चीज़ वाला इंजेक्शन हो, वो इसमें दाखिल शामिल हो गया, यानी इसे फासिल नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो मसाइल हैं वो आप बाद में पूछ सकते हैं, हमें नहीं पता होगा, हम किसी से पूछ कर वो बता देंगे, या ये कि आप खुद डायरेक्टली उलमाए कराम मुफ्तिया मुफ्तियान कराम से पूछ लें। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अच्छी तैयारी के साथ रमज़ान मुबारक में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए और इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन रमज़ानों में शामिल फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।